समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, ऑल्सो अ हार्टफेल्ट हेलो एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन विद करिश्मा हियर एंड वील गिव यू a selection of news. Our discussion segment Dateline India is a pretty interesting topic which we are going to discuss about. We'll give you reports, also capsules, and we'll pay our tributes in the ending segment of this program, and there is a lot more, so make sure listeners that you stick around with us till the very end over the next roughly 30 minutes. But first we'll begin with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा, प्रभावित परिवारों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया।
Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi said the attack shows desperation and cowardice of the patrons of terrorism who do not want peace and democracy to return to Kashmir.
श्री मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी संकट के समय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तत्परता देश की पहचान बन रही है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटेंसिफाइज सर्च फॉर एविडेंस इन द पहलगाम टेरर अटैक केस।
ईरानी बंदरगाह पर भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 800 से अधिक लोग घायल।
And now, listeners, let's begin our segment Dateline India, in which we take a look at the developments which are taking place at national or global level. And today, we will talk about the World Audiovisual and Entertainment Summit, or WAVES. Listeners, India occupies a dominant position in media and entertainment sector, with talents which are spread across different geographies of the country, creating compelling contents through its rich cultural heritage. The World Audiovisual and Entertainment Summit WAVES, to be held from 1st to 4th May in Mumbai, is poised to become one of the landmarks in the media and entertainment sector. Well, the summit is an initiative by the Ministry of Information and Broadcasting and will promote India as one-stop destination for content creation, investment destination, and leverage Create in India opportunities, as well as global outreach will be there. It will position the country as an unparalleled global powerhouse in the cultural and creative domain. Right, Krishma?
बिल्कुल, और मीडिया और मनोरंजन की परिवर्तनकारी शक्तियों को पहचानते हुए विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स के प्प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। ये ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। इसके साथ ही डिजिटल युग चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रीमिंग क्रांति, बौद्धिक संपदा अधिकार, गलत सूचना और मीडिया स्थिरता प्रमुख चिंताएं हैं। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्म तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों को संबोधित करेगा। शिखर सम्मेलन सामग्री निर्माण और प्रसार में रचनात्मकता, समावेशिता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा। यह नैतिक कहानी कहने और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी जोर देगा।
जी, एंड देयर इज ऑलवेज सम एस्पिरेशन बिहाइंड ऑल इनिशिएटिव्स, एंड बाय व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द प्रिज्म ऑफ हार्मनी, वेल वेज 2025 इट एस्पायर्स टू इंस्पायर मीनिंगफुल कनेक्शंस, कोलैबोरेटिव प्रोग्रेस, and cultural unity. This session will be a crucial step in reinforcing the media and entertainment industry's role as the biggest unifying factor between country to country, people to people, and culture to culture in the digital age. World Waves 2025 emphasizes the power of unity by focusing on shared concerns, challenges which are faced by humanity, shared opportunities, collaborative growth, and progress. Well, this vision positions Waves 2025 as a global platform for harmony, fostering meaningful dialogue and action that transcend borders.
बिल्कुल शगुन, और इसके साथ ही खास बात यह भी है कि मुंबई में वेव्स 2025 की मेजबानी करके शिखर सम्मेलन विचारकों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। वे चर्चा करेंगे कि मीडिया उद्योग तेजी से बदलती दुनिया में सबसे बड़े एकीकृत कार्य के रूप में कैसे कार्य कर सकता है। ये क्षेत्र सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो लोगों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच की खाई को भी पाटता है। 100 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ वेव्स 2025 ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल होंगे। इसके साथ ही शगुन, सम्मेलन का उद्देश्य सहयोग को भी बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है और मनोरंजन, मीडिया और प्रौद्योगिकी के लिए निरंतर विकसित होते परिदृश्य में नए अवसरों की खोज करना है।
Focus on another important point here, that the integration of Waves 2025 within the Orange Economy. Well, Orange Economy, listeners, also known as the Creative Economy, it refers to the economic activities which are rooted in creativity and culture, encompassing industries like art, music, film, design, fashion, and cultural tourism as a whole. I just enumerated what all is focused in Orange Economy. Well, this Orange Economy highlights its role in leveraging the media and entertainment industries for economic growth and job creation. This aligns perfectly with its mission of global harmony, as creative industries serve as powerful tools for cultural exchange and unity. Well, this summit also, Karishma, will feature a Waves Bazaar. Very interesting, with the top selects lineup showcasing 15 projects in 9 languages. Well, these projects, let me tell you, include feature films, documentaries, short films, and also web series. They will be pitched to potential investors and also industry potential.
बिल्कुल, और शगुन, इसके साथ ही वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए प्रमुख वैश्विक बाजार होगा, जो कनेक्शन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये एक गतिशील मंच है। ये फिल्म निर्माताओं और उद्योग के खरीदारों, विक्रेताओं और कई तरह के परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है, साथ ही अपने कौशल का प्रदर्शन और अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार भी करता है। विंग रूम वेब्स बाजार में स्थापित एक समर्पित भौतिक मंच है। ये दुनिया भर से हाल ही में पूरी हुई फिल्मों और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता है। ये फिल्में फिल्म समारोहों, वैश्विक बिक्री, वितरण साझेदारी और फिनिशिंग फंड के लिए सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश कर रही है।
Well, let me add another point, important point on viewing room here. It is designed for film programmers, distributors, world sales agents, investors and other industry professionals. And this is the viewing room, Karishma. It offers a secure environment where delegates attending Waves Bazaar can watch these films, access detailed project information and connect directly with filmmakers through our specialized viewing room software, with this viewing room software. And our listeners, listen carefully, intently. For the first ever Waves Bazaar, a total of 100 films from 8 countries, namely India, Sri Lanka, US, Switzerland, Germany, Mauritius and UAE, will be available to watch in the viewing room library. The overall lineup, it includes 18 titles of NFDC produced and co-produced films and adds 8 restored classics from the National Film Archive of India. This also includes 19 student projects from Film and Television Institute of India, FTII Pune, and Satyajit Ray Film and Television Institute,
कोलकाता।
बिल्कुल, और इसके साथ ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि वेव्स भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो कंटेंट निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाएगा। साथ ही प्रसारण, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि और संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जेनरेटिव AI जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस करिश्मा, फर्स्ट वील बिगिन आवर परिक्रमा विद ले। Well, Ladakh is stepping towards Prime Minister's vision for making the region carbon neutral as the Union Territory campaigns to promote PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Here is more from our correspondent.
Power Development Department, Union Territory of Ladakh initiated a significant campaign to promote PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana among the domestic consumers in Ladakh. The awareness campaign provides the platform for households to understand how they can potentially enjoy free electricity through subsidized rooftop solar panel installations. The scheme offers financial incentives covering up to 25% of the total cost of solar rooftop system for domestic consumers. By adopting this scheme, households can significantly reduce their electricity bills and even they can earn income by selling surplus generated power back to the grid. The campaign is a step towards promoting sustainable energy adoption and empowering the populace of Ladakh with cost-effective and environment-friendly power solution. This will aid in the increased use of renewable energy in Ladakh and also help to enhance the voltage stability in the region. Talking to Parikrama, Executive Engineer, Electric Project Division, Leh Power Development Department, Ladakh, GM Kari, sharing more on the scheme.
इस सोलर रूफटॉप की कैपेसिटी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या इससे जायद हो सकती है। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी ने सब्सिडी रखी हुई है। अगर आप 1 किलोवाट का यूनिट लगा लेते हैं तो सेंट्रल सब्सिडी 33,000 रुपीस है और यूटी सब्सिडी 20,000 रुपीस है। टोटल मिला के 53,000 रुपीस की सब्सिडी है। अगर आप 2 किलोवाट का यूनिट लगा लेते हैं तो इसमें सेंट्रल सब्सिडी 66,000 है और यूटी की सब्सिडी 40,000 रुपीस है। टोटल मिला के 1,06,000 की सब्सिडी है। अगर आप 3 किलोवाट का यूनिट लगा लेते हैं तो 85,800 की सेंट्रल सब्सिडी है, 50,000 की यूटी सब्सिडी है। टोटल मिला के 1,01,35,800 रुपीज की सब्सिडी है। अगर आप सोलर रूफटॉप लगा रहे तो इसके फायदे ये रहेंगे कि अगर आप 1 किलोवाट का यूनिट लगा लेते हो तो 1 महीने में ये 150 यूनिट जनरेट करेगा। हम एवरेज में ले रहे हैं 5 घंटे, 5 आवर्स ए डे। इसी तरह 2 किलोवाट का यूनिट लगा लेते हो तो ये 300 यूनिट्स जनरेट करेगा और 3 किलोवाट की का यूनिट लगा लेते तो 450 यूनिट्स जनरेट। चूंकि लद्दाख में सन ड्यूरेशन आवर्स मोर देन 5 आवर्स हैं तो ऑब्वियसली जो जनरेशन होगी इट विल बी मोर देन 450 यूनिट्स। इसके फायदे ये रहेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर अपने घर में सोलर रूफटॉप लगा लेता है तो उसका बिजली बिल फ्री हो जाएगा। जहां तक टारगेट्स की ताल्लुक है, हमें 2024-25 में अराउंड 1000 यूनिट्स लगाने थे, 25-26 में 1500 यूनिट्स लगाने हैं, 26-27 में 1500 यूनिट, टोटल मिला के 4000 यूनिट्स लगाने हैं। आज की डेट में हमने 385 यूनिट्स के करीब इंस्टॉल किए हुए हैं।
This scheme will also cover the government buildings in Ladakh in addition to the domestic households, and the department has identified 1,533 such buildings for rooftop solar panel installation. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की कई प्रजातियों में थोड़ा रहस्यमय लगने वाला पक्षी यानी उल्लू, देश के कुछ इलाकों में इस पक्षी को शुभ माना जाता है तो कहीं और यह सुंदर पक्षी अंधविश्वास का शिकार बनता है। लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण के एक गांव को उल्लुओं ने अपना बसेरा बना लिया है। इस उल्लुओं का गांव के बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारे मुंबई संवाददाता के पास।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में बसा बांदा गांव उल्लुओं के लिए नैसर्गिक अधिवास के रूप में उभर रहा है। यहां 7 से 8 विभिन्न प्रजातियों के उल्लुओं का अस्तित्व पाया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सिंधुदुर्ग के संवाददाता नीलेश जोशी।
गोवा की सीमा से लगकर बसा बांदा गांव प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही यहां की जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। अब इसकी एक अलग पहचान उभर कर आ रही है, उल्लुओं का गांव। यहाँ के नेचुरलिस्ट प्रवीण सातोस्कर और उनकी टीम बर्ड वॉचिंग के लिए यहाँ आती थी। तब उन्हें विभिन्न उल्लुओं की आवाजें सुनाई देती थी। इन्हीं आवाजों का पीछा करते हुए उन्हें पता चला कि 7 से 8 किस्म के उल्लुओं ने यहाँ बसेरा बनाया है। आइए सुनते हैं खुद प्रवीण सातोस्कर से।
सिंधुदुर्ग जिले की जयवर्धा में उल्लुओं का एक खास स्थान है। यहाँ लगभग 12 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। केवल बांदा क्षेत्र में ही 8 अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें शामिल है बार्न आउल, इंडियन स्कॉप्स आउल, जंगल आउलेट, स्पॉटेड आउलेट, ब्राउन फिश आउल, ब्राउन उड आउल, रॉक कीगल आउल और ब्राउन बुबू। यही कारण है कि पर्यटकों ने स्नेहपूर्वक बांदा को उल्लुओं का गांव यह विशेष नाम दिया है।
प्रवीण सतोस्कर बताते हैं कि एक ही जगह पर उल्लुओं की इतनी प्रजातियां मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बांदा में अलग अलग प्रकार के अधिवास जैसे नदी, जंगल और खेती होने की वजह से यह उल्लुओं का नैसर्गिक अधिवास बन रहा है।
एक तरफ जहां भारत में पाई जाने वाली उल्लुओं की कई प्रजातियां खतरे में हैं, वहीं दूसरी तरफ कोकड़ में बसा ये छोटा सा गांव बांदा उल्लुओं का गांव बन इस अद्भुत पक्षी के लिए सुरक्षित घर के रूप में उभर रहा है। सिंधुदुर्ग से नीलेश जोशी के साथ परिक्रमा के लिए अंकिता आप्टे, मुंबई।
और अब बात करेंगे दार्जिलिंग की। दरअसल दार्जिलिंग पहाड़ अर्किड फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हिमालय की सुंदर और रमणीय वादियों, विशेषकर जंगलों में पाई जाने वाली अर्किड प्रजातियों से जंगल के इलाके इस मौसम में बेहद मनमोहक, रमणीय और सुगंधित हो जाते हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटकों को प्रकृति की सुंदरता की ओर आकर्षित करते हैं। एक रिपोर्ट।
दार्जिलिंग पहाड़ ऑर्किड फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिमालय की सुंदर व रमणीय वादियों, विशेषकर जंगलों में पाई जाने वाली अर्किड प्रजातियों से जंगल के इलाके व रमणीय स्थल इस मौसम में बेहद मनमोहक, रमणीय व सुगंधित हो जाते हैं तथा बड़ी संख्या में पर्यटकों को प्रकृति की सुंदरता की ओर आकर्षित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में करीब 28,000 ऑर्किड के प्रजातियां विद्यमान है। भारत विश्व को ऑर्किड आपूर्तिकर्ता प्रमुख देशों में एक है। थाईलैंड विश्व में सबसे अधिक ऑर्किड का निर्यात करता है व जापान विश्व का सबसे बड़ा इसका खरीदार देश है। ऑर्किड एक बहुत ही सुंदर व सुगंधित सजावटी फूल है जो सफेद, गुलाबी, नीले, बैंगनी, लाल आदि रंगों में खिलता है। लताओं से लटकता हुआ यह फूल का समूह बेहद सुंदर व सुगंधित होता है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिला दार्जिलिंग का कर्शियंग महकुमा सफेद ऑर्किड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अतः प्रत्येक वर्ष पर्यटन तथा ऑर्किड के निर्यात के लिए यहां ऑर्किड ट्रेल का आयोजन किया जाता है। भारत में कर्शियंग एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सफेद ऑर्किड बड़ी संख्या में पाई जाती है। इतिहास की बात करें तो किसी समय यहाँ कर्शियंग शहर में बड़ी संख्या में लेप्चा जाति के लोगों का निवास था। लेप्चा भाषा में सफेद ऑर्किड को खरसांग कहते हैं। यहाँ सबसे अधिक सफेद ऑर्किड पाए जाने के कारण इस शहर का नाम ही खरसांग पड़ा, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर कर्शियंग कहलाया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफेद ऑर्किड के लिए कर्शियंग कितना महत्व रखता है और हरेक वर्ष सफेद ऑर्किड ट्रेल कार्यक्रम पर्यटन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियंग।
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुंबई में मुकाबला चल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंतिम रिपोर्ट आने तक मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बना लिए थे। दूसरे मैच में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 9 मैचों में 10 अंकों के साथ तालिका में क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पे हैं। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 12 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 मैचों में 11 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे हैं।
फोकसिंग नाउ ऑन बैडमिंटन, पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन विल लीड इंडियन चैलेंज एट द सुदीर्मन कप 2025 इन शामन, चाइना स्टार्टिंग टुडे। इन देयर फर्स्ट ग्रुप डी क्लैश India will face Denmark this afternoon. Apart from Denmark, India's other challengers in Group D are second-seeded Indonesia and England. The top two teams from the group will advance to the quarterfinals. And now I'll share the news from defense. IOS Sagar arrived at Port Louis Harbour, Mauritius yesterday on completion of Phase 1 of joint EEZ surveillance with National Coast Guard Mauritius as part of deployment to the southwestern Indian Ocean. The visit marks a significant milestone in India's commitment to regional maritime cooperation and capacity building with friendly foreign countries. The ship, which sailed from Karwar on 5th April, has 44 naval personnel from 9 friendly foreign nations of the Indian Ocean region, including 2 officers and 6 sailors from the Republic of Mauritius. This initiative underlines the Indian Navy's continued efforts to enhance interoperability, mutual learning and regional maritime security in a spirit of collective growth and cooperation. The vessel, a state-of-the-art Sariu-class NOPV, is designed for anti-piracy operations, maritime surveillance and HADR. The ship is equipped with medium and close-range gunnery weapons and modern electronic warfare suites, including missile defense measures. It can also carry a helicopter, which enhances operational and surveillance capability. During the port call, the commanding officer IOS Sagar will call on the commandant, National Coast Guard, the Commissioner of Police and the High Commissioner of India. And now, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember Mani Bhai Bhim Bhai Desai, who was born on the 27th of April 1920 in Surat, Gujarat. An associate of Mahatma Gandhi, Mani Bhai Desai was imprisoned during the Quit India movement in 1942.
In 1946, Mahatma Gandhi sent Mani Bhai Desai to the Nature Cure Ashram at Uruli Kanchan, situated near Pune. He dedicated himself to rural development based on modern and scientific lines. Desai also promoted many initiatives for the benefit of rural people, including water distribution systems in drought-prone areas, rural school at Uruli Kanchan, with emphasis on vocational training and cooperative joint farming society.
Desai was awarded the Padma Shri by the Government of India. Mani Bhai died on the 14th of November 1993 in Pune. The institutes he established continue to serve the nation and the people. Also remember Gandhian freedom fighter Anjana Devi Chaudhary, who passed away on the 27th of April 1981. She, along with her freedom fighter husband Ram Narayan Chaudhary, fought against the feudal policies of the princely states of Rajputana. Through Rajasthan Seva Sangh, founded in 1920, Anjana Devi worked towards advancing the causes of poor farmers and landless laborers. Anjana Devi awakened political consciousness among the women of Mewar and Bundi from 1921 to 1924. She was arrested and exiled from Bundi state. Later, she led a procession of 500 women in Bijolia and got the arrested farmers released. Anjana Devi was imprisoned twice for her participation in national movements from 1932 to 1935. She dedicated herself to the service of Bhils in Dungarpur state in the 1930s and participated in Mahatma Gandhi's programs by staying in Sevagram Ashram from 1939 to 1942. For 5 years, she was busy running the Women's Information Department of the Bharat Sevak Samaj. Throughout her life, she continued to work with a dedicated spirit for public service and nation building. We salute the great daughter of India.
We also remember social reformer T.K. Madhavan, who died on the 27th of April, 1930. He was involved with the Sri Narayan Dharma Paripalan, SNDP movement, and was a prominent member of the temple entry movement, which fought for the entry of oppressed communities to the temples of Kerala. He was the original architect behind the Vaikom Satyagraha. The Vaikom Satyagraha is a testament to the importance of the struggle against the aggressive social practices as part of the war against the British colonizers.
Madhavan was born on September 2, 1884 at Karthikapalli, Kerala. He was very active in the social reform movement and in 1915 started the weekly newspaper Deshabhimani. In 1918, he presented a resolution seeking permission of temple entry and right to worship to all people, irrespective of caste and community, at Sri Moolam Praja Sabha, the Legislative Council of Travancore. The resolution was presented in the Kakinada session of the Indian National Congress in 1923.
In 1924, Vaikom Satyagraha was started under the leadership of Madhavan, K. Kelappan and K. P. Keshav Menon to get the right of oppressed classes to walk along the road in front of Vaikom Mahadev Temple. Madhavan and Keshav Menon were arrested and imprisoned. Finally, the Maharaja of Travancore agreed to open the road to all classes of people. However, he had to continue his struggle for the temple entry. He met Gandhiji at Tirunelveli and persuaded him to visit Vaikom.
Madhavan fought for the rights of people till the very end. We salute the great Indian Emperor.
और अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस.
Yes, Karishma, first we'll begin with Rajshekhar Basu. Well, chemist, author and lexicographer, his pen name being Parshuram. His comic and satirical short stories are very popular and from a very tender age, he exhibited a fascination with science, conducting experiments by dismantling even his toys and creating his own home laboratory. His passion for weather forecasting, writing prescriptions and even engaging in anatomical studies demonstrated at a very early age an inquisitive spirit and early signs of his scientific acumen. Well, he has been awarded the Padma Bhushan in the year 1956 as well.
बिल्कुल. और अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा के करिश्माई अभिनेताओं में गिने जाने वाले विनोद खन्ना की आज पुण्यतिथि है. उनका जन्म पेशावर में हुआ था. विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया. पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान अभिनय की ओर बढ़ा और उन्होंने 1968 में फिल्म मन के मीत से अपने करियर की शुरुआत की. शुरू में उन्हें खलनायक की भूमिकाएं मिली लेकिन जल्द ही वे नायक के रूप में दर्शकों के चहेते बन गए. उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल है मेरा गांव मेरा देश, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, दयावान, चांदनी. अमर अकबर एंथनी में उनकी अदाकारी और कुर्बानी में उनका अंदाज आज भी याद किया जाता है. इसके साथ ही शगुन अमर अकबर एंथनी में उनका जो गाना था तेरे मेरे बीच में आज भी लोगों के दिलों में बसता है.
Well, also, let's tell our listeners that he was posthumously, in 2018, awarded, honored with the Dada Sahib Phalke Award, well, at the 65th National Film Awards.
बिल्कुल. और इसके साथ ही विनोद खन्ना ने राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई. वे भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे.
Well, moving on, let's also talk about Ralph Waldo Emerson, lecturer, philosopher and poet. He's also been an essayist. Well, he was seen as a champion of individualism and critical thinking, as well as a prescient critic of the countervailing pressures of society and conformity. Well, let me talk about one of his books, first books, Nature. It was in the year 1836 and is perhaps the best expression of his transcendentalism, the belief that everything in our world, even a drop of dew, is a microcosm of the universe.
बिल्कुल. और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान की आज पुण्यतिथि है. उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था. पढ़ाई के दौरान ही फिल्मों में रुचि जगी और मुंबई का रुख किया. 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत की. शुरुआती दौर में सहायक भूमिकाएं निभाई जैसे कि ऑपरेशन काउंटर स्पाई और अदालत, लेकिन जल्द ही अपने अंदाज और दमदार अभिनय से पहचान बना ली. और उनकी प्रमुख अगर फिल्मों की बात करें शगुन, तो इसमें आराधना, धर्मात्मा, कुर्बानी, जानबाज, दयावान और प्रेम अगन जैसी फिल्में शामिल हैं.
एंड यस, ही बिकेम वन ऑफ द पॉपुलर स्टाइल आइकॉन्स ऑफ हिज टाइम फ्रॉम हिज मूवीज बिकॉज ऑफ हिज वेरी सक्सेसफुल रोल्स इन सच फिल्म्स. ऑल्सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट जोहरा सेगल. Well, today it's her birth anniversary. Iconic actress and dancer and a true legend of Indian cinema and also theatre. Well, her career spanned an incredible 8 decades and she left a unique mark across films, television and stage.
बिल्कुल. तो आपको बता दें कि 1946 में जोहरा सहगल ने पहली बार फिल्म नीचा नगर में अभिनय किया था, जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता. इसके बाद वे धरती के लाल और आवारा जैसी फिल्मों से जुड़ी और इसके बाद उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, दिल चाहता है, वीर जारा, सांवरिया और चीनी कम जैसी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
And now, listeners, I think it's time for us to go and leave you with this wonderful, wonderful edition of our Parikrama. Thank you so much, listeners, for tuning in.
बिल्कुल. तो श्रोताओं, अब समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने.